دانیال چودواں باب
تذکرائے بال اور استواج بادشاہ اپنے باپ دادا کے ساتھ جا ملا اور کورش فارسی اس کی مملکت پر قابض ہو گیا اور دانیال بادشاہ کا مصاحب تھا اور اپنے تمام رفیقوں سے زیادہ عزت دار تھا اور اہل بابل کا ایک بت تھا جس کا نام بال تھا اور وہ اس کے واسطے 12 ارادب میدے کے اور 40 بھیڑیں اور 6 امتار میں خرچ کیا کرتے تھے اور بادشاہ بھی اس کی پرستش کرتا اور ہر روز جا کر اسے سجدہ کرتا تھا، لیکن دانیال اپنے خدا ہی کو سجدہ کیا کرتا تھا۔ اور بادشاہ نے اس سے کہا کہ تو بال کو کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ اس نے جواب دیا کہ میں ہاتھ کے بنے ہوئے بتوں کی نہیں بلکہ زندہ خدا کی پرستش کرتا ہوں، جو آسمان اور زمین کا خالق اور تمام مخلوقات پر مقتدر ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ کیا تو خیال کرتا ہے کہ بال زندہ خدا نہیں؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ ہر روز کتنا کھاتا پیتا ہے؟ اس پر دانیال نے تبسم کر کے کہا کہ اے بادشاہ، فریب نہ کھا، کیونکہ اس کا باطن مٹی اور ظاہر پیتل ہے، اور اس نے ہرگز کبھی کچھ نہیں کھایا۔ تب بادشاہ غصے ہوا اور پجاریوں کو بلا کر ان سے کہا کہ اگر تم مجھے نہ بتاؤ کہ یہ ساری خوراک کون کھا جاتا ہے تو تم مرو گے، اور اگر تم ثابت کر دو کہ بال اسے کھاتا ہے تو دانیال مرے گا، اس لیے کہ اس نے بال کی تکفیر کی ہے۔ دانیال نے بادشاہ سے کہا کہ تیرے قول کے موافق ہو، اور بال کے پجاری ماں سوائے عورتوں اور بچوں کے 70 تھے، اور بادشاہ دانیال کے ساتھ بال کے مندر میں آیا، اور بال کے پجاری کہنے لگے کہ دیکھ، ہم باہر چلے جاتے ہیں اور تو اے بادشاہ خوراک دھر اور میں ملا کر سامنے رکھ، پھر دروازہ مضبوطی سے بند کر دے اور اس پر اپنی خاتم سے مہر لگا دے، اور اگر تو صبح کے وقت پھر آ کر یہ نہ پائے کہ بال نے سب کچھ کھا لیا ہے تو ہم مریں گے، ورنہ دانیال مرے گا جس نے ہم پر جھوٹا الزام لگایا ہے، کیونکہ وہ اس امر کو ہلکا سمجھتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے میز کے نیچے ایک پوشیدہ رکھنا بنایا ہوا تھا جس میں سے وہ داخل ہوا کرتے تھے تاکہ سب کچھ کھا جائیں۔ پس جب وہ باہر گئے اور بادشاہ نے بال کے سامنے خوراک رکھی تو دانیال نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ راکھ لائیں، اور اس نے اکیلے بادشاہ کے روبرو سارے مندر کے اندر خاک پاشی کی۔ تب وہ باہر نکلے اور دروازے کو بند کر دیا اور شاہی خاتم سے اس پر مہر کر دی اور چلے گئے، اور رات کے وقت پجاری حسب معمول अपनी बीवियों और बच्चों समेत आए और सब कुछ खा पी गए। बादशाह सुबह सवेरे उठा और दानियाल को साथ लेकर गया और कहा, ए दानियाल, क्या मोहरे साबित हैं? उसने कहा, ए बादशाह, साबित हैं। दरवाजा खोलते ही बादशाह ने मेज की तरफ नजर करके बुलंद आवाज से नारा मारा, ए बाल, तू अजीम है और तुझ में कोई फरेब नहीं। तब दानियाल मुस्कुराया और बादशाह को अंदर जाने से रोका और कहा कि फर्श को देख और पहचान ले कि ये किन के पांव के निशान हैं। बादशाह ने कहा कि मैं आदमियों और औरतों और बच्चों के पांव के निशान देखता हूं। और बादशाह ने गजबनाक होकर पुजारियों को, उनकी बीवियों और बच्चों समेत बुला भेजा और उन्होंने उसे वो पोशीदा दरवाजे दिखाए जिनसे वो दाखिल होते थे, ताकि जो कुछ मेज पर हो खा लें। तब बादशाह ने उन्हें कत्ल करवा दिया और बाल को दानियाल के हाथ में हवाले कर दिया और बाल को मां उसके मंदर के तुड़वा दिया।
तस्कराए अजदहा। और एक बड़ा अजदहा था जिसकी अहले बाबल प्रस्तिश करते थे। बादशाह ने दानियाल से कहा कि अब तो तू नहीं कह सकता कि ये जिंदा खुदा नहीं, बस इसे तू सजदा कर। दानियाल ने कहा कि मैं खुदावंद अपने खुदा को सजदा करता हूं, क्योंकि वही जिंदा खुदा है। बस ए बादशाह, तू मुझे इजाजत दे तो मैं इस अजदहा को तलवार और लाठी लिए बगैर ही मार डालूंगा। बादशाह ने कहा कि मेरी तरफ से इजाजत है। इस पर दानियाल ने राल और चर्बी और बाल लेकर उन्हें इकट्ठा पकाया और उनकी टिक्कियां बनाई और अजदहा के मुंह में डाल दी, तो अजदहा उन्हें खा गया और फट गया। और दानियाल ने कहा कि देख लो, तुम किसकी परस्तिश करते हो। जब बाबिल के बाशिंदों ने यह सुना तो बहुत गुस्से में आकर दानियाल के खिलाफ जमा हुए और कहने लगे कि एक यहूदी शख्स बादशाह बन गया है, उसने बाल को तोड़ दिया और अजदहा को मार डाला और पुजारियों को कत्ल करवा दिया है। और उन्होंने बादशाह के पास जाकर कहा कि दानियाल को हमारे हवाले करो, वरना हम तुझे और तेरे खानदान को कत्ल कर देंगे। जब बादशाह ने देखा कि वो मुझ पर झपटते हैं, तो उसने नाचार होकर दानियाल को उनके हवाले कर दिया और उन्होंने उसे शेरों के घड़े में डाल दिया, जहां वो 6 दिन तक रहा। घड़े में 7 शेर थे, जिन्हें हर रोज 2 लाशें और 2 भेड़ें दी जाती थीं, पर उस वक्त उन्हें कुछ नहीं दिया गया था, ताकि वो दानियाल को फाड़ खाएं। और यहूदा की सरजमीन में हबकूक नबी था, उसने सालन पकाया और रोटी तोड़कर रिकाबी में डाली और उसे खेत की तरफ फसल काटने वालों के पास ले जाने लगा। तब खुदावंद के फरिश्ते ने हबकूक से कहा कि जो खाना तेरे पास है उसे बाबल में दानियाल के लिए ले जा, जो शेरों के गढ़े में है। हबकूक ने कहा कि ए आका, मैंने ना तो कभी बाबल को देखा और ना उस गढ़े ही को जानता हूं। तब खुदावंद के फरिश्ते ने उसे सर की चोटी से पकड़ा और उसे सर के बालों से उठाया और उसे दम भर में बाबल में घड़े के करीब जा उतारा। और हबकूक ने पुकार कर कहा कि ए दानियाल, ए दानियाल, ये खाना ले जो खुदा ने तुझे भेजा है। तो दानियाल ने कहा कि ए खुदा, तूने मुझे याद रखा है, तू उन्हें नहीं छोड़ता जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं। और दानियाल ने उठकर खाया और खुदावंद के फरिश्ते ने उसी वक्त हबकूक को फिर उसकी जगह में वापस पहुंचा दिया। सातवें दिन बादशाह आया ताकि दानियाल पर मातम करे और वो घड़े के नजदीक आया और उसके अंदर नजर की और दानियाल को बैठे हुए देखा। तब उसने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि ऐ खुदावंद, दानियाल के खुदा, तू अजीम है और तेरे सिवा और कोई खुदा नहीं। और उसने उसे बाहर निकलवाया, लेकिन उन्हें जिन्होंने उसे हलाक करने की कोशिश की थी घड़े में डलवाया, तो वो उसके देखते ही देखते उसी वक्त फाड़े गए। तब बादशाह ने कहा, तमाम बाशिंदगाने जहान, दानियाल के खुदा के हजूर तरसा हूं, क्योंकि वही रिहाई देता और जमीन पर करिश्मे और अजायबात दिखाता है, और उसी ने दानियाल को शेरों के घड़े में से छुड़ाया।